कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर की महती कृपा है, उस देवादिदेव ने एक बार फिर आपसे श्री चरणों में उपस्थित होने का अवसर मुझे दिया है। महिमा उसी की है, अपरंपार है। आप सबकी सेवा में दो शब्द, प्रैक्टिकल अध्यात्म क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष, इस विषय में दो शब्द आपकी सेवा में कहे जाएंगे। एक बहुत बड़ा किसान है, उसके पास 19 पशु हैं, बैल कशी, ऊंट कशी, 19। मरने से पहले अपनी विल लिखी है, मरने के बाद आधे पशु मेरे पुत्र को दिए जाएं, चौथा हिस्सा मेरी प्रिय पत्नी को दिए जाएं, और पांचवा हिस्सा मेरे वफादार नौकर को दिए जाएं। मृत्यु हो गई, सारे गांव के सामने एक समस्या खड़ी हो गई, 19 पशु हैं, आधे 9.5 कैसे किए जाएं, 1/4 5 कैसे किए जाएं, 1/5 4 कैसे किए जाएं। इसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गांव वालों को पता है, यह किसान जिम्मेदार मूर्ख तो नहीं था, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा, वह ऐसा क्यों लिख के गया है। कई दिन व्यतीत हो गए, विभाजन नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स की नहीं हो रही। एक संत महात्मा पधारे हैं, उनके पास भी एक निजी पशु था। प्रॉब्लम सुनी और सुन के कहा, बंधु बड़ी आसानी से इसका समाधान हो सकता है, आपको अपने हिस्से से यदि अधिक पशु मिल जाएं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। संत ने पूछा, कहा नहीं, ठीक बात है, एक मेरा पशु भी इन 19 में डाल लीजिए तो 20 हो गए, आधा हिस्सा पुत्र को 10 दे दीजिए, चौथा हिस्सा अर्थात 5 पत्नी को दे दीजिए, पांचवा हिस्सा 4 मेरे नौकर को दीजिए, और मेरा मुझे वापस कर दीजिए। 19 पशुओं का विभाजन उस एक के साथ जुड़ने के साथ संभव हो गया। बंधु, संत महात्मा कहते हैं, इस शरीर में भी वो 19 ही हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार 19। यदि आप चाहते हो कि इनका संचालन ठीक ढंग से हो सके, यदि आप चाहते हो कि इनकी वर्किंग ठीक हो सके, तो आपको उस एक की आवश्यकता है जिसे परमात्मा कहा जाता है, और उस परमात्मा के रूप में वह हम सबके अंदर आत्मा मन के तो विराजमान है, सबसे बड़ा है। एक छोटी सी समस्या थी बिटिया, जिसका समाधान एक पशु से जुड़ने से हो गया। हमारे जीवन में तो समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है, आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हो, कभी बड़ी समस्या को तो सोचा ही नहीं है। वह जन्म मरण की समस्या हमारी कैसे सुलझेगी, और एक ही समाधान है, उससे जुड़े बिना इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकेगा, जन्म जन्मांतर नहीं हो सकेगा, युग युगांतर नहीं हो सकेगा। तो उसके साथ जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। आप चाहते हो कि आपकी छोटी समस्या, आपकी मध्यम समस्या, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाए, तो उस एक से जुड़े बिना उसका समाधान नहीं हो सकेगा। परमात्मा से जुड़ने को ही परमात्मा की भक्ति कहा जाता है। स्पिरिचुअल व्यवहारिक पक्ष स्पिरिचुअलिटी का उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब मैं नामदान देता हूं, जब मैं दीक्षा देता हूं, तो उस वक्त जितने भी दीक्षा लेने वाले होते हैं, जिनको मैं राम राम जपने के लिए निवेदन करता हूं, राम मंत्र जपने के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सब का कनेक्शन मैं परमात्मा के साथ जोड़ देता हूं। जैसे नियामकान बनता है, उसमें सब प्रकार की बिजली की फिटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन न पंखा चल रहा है, न लाइट चल रही है, तो मालिक कहता है अभी कनेक्शन नहीं मिला। स्वामी जी महाराज ने इसी बात पर कहा था, जैसे बिजली के लिए बिजली से कनेक्शन बिजली वालों से लेना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से नाम दान देते वक्त, दीक्षा देते वक्त, मैं कनेक्शन, मैं तार परमात्मा के साथ साधक की जोड़ता हूं। परमात्मा के साथ जुड़ना देवी सज्जनों कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति का नियम एक जानने की आवश्यकता। आप संसारिक दृष्टि से कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, यदि आप उस एक से जुड़े हुए नहीं हो, तो प्रकृति आपको नीचे गिरा के रहेगी। ये उसका नियम है। बचाओ करने वाला सिर्फ परमात्मा, प्रकृति बचा नहीं सकती देवी और सज्जनों। प्रकृति सिर्फ सजा देनी जानती है, दंड देना जानती है, क्षमा नहीं कर सकती, बल नहीं दे सकती, वैसा कुछ परमात्मा के पास है। अतएव उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी। एक संत महात्मा नित्य कहीं प्रवचन करने के लिए सत्संग के लिए जाया करते, आज भी गए हुए हैं, लगभग साल में एक दो बार जाते हैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, कहा महाराज मैं बहुत देर से आपके सत्संग में आता हूं, मेरी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, मैं असमर्थ भी हूं, मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं, आपके पास बहुत से सेठ लाला आते हैं, किसी एक को, उस वक्त की बात है जब एक रुपये में रोज का एक रुपया परिवार पल जाता था, एक रुपया यदि ये सेठ मुझे रोज दे दिया करे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। सेठ वहीं बैठे हुए थे, उन्हें कहा ठीक बात है, अब बाबा को क्यों तकलीफ देते हो, ये एक कागज उस पर लिख के दे दिया, ये मेरे ऑफिस में दे देना, तुम्हें रोज एक रुपया मिल जाया करेगा, गुजारा शुरू हो गया। एक रुपया रोज लेता है, अपने परिवार को पालता है। एक रुपया बिटिया कब तक पर्याप्त रहेगा, महंगाई बढ़ती जाती है तो एक रुपया पर्याप्त नहीं रहता। एक वर्ष के बाद बाबा फिर आए तो इन्होंने कहा, बाबा इस एक के साथ एक बिंदी और लग जाए रोज तो मेरा काम चल जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाई वगैरह भी शुरू करनी है, एक से गुजारा नहीं चलता। कोई बात नहीं बेटा, 10 रुपये रोज मिलने शुरू हो गए। 2 साल तक यही सिलसिला चला। 2 साल के बाद फिर ये व्यक्ति सत्संग के लिए गए हैं, महात्मा का आगमन हुआ। कहा महाराज आप सब जानते हो, अब 10 रुपये रोज में भी गुजारा नहीं होता, मेरी भी वृद्धावस्था होती जा रही है, रोग इलाज स्कूल के खर्चे इत्यादि इत्यादि, एक बिंदी और लग जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पहले कि सेठ कागज लिख के दी, शीर्षक कागज महात्मा ने पकड़ लिया। कह लाला इस बार ये बिंदियां मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने बिंदियां लगानी कागज पर शुरू कर दी। आप देखो मेरी तरफ, ये एक है, उसके आगे पहले एक बिंदी थी, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदियां ही बिंदियां लगा थी। महात्मा ने कहा भाई बस करने के लिए भी कहो, मैं बिंदियां ही बिंदियां लगाता जा रहा हूं। कहो कि बस करो बाबा, अब तेरा लोभ बढ़ता ही जा रहा है, कितनी बिंदियां लगाऊं बोल, देख कितनी बिंदियां मैंने लगा दी हैं। जो आपकी इच्छा बाबा, ठीक है। बाबा ने कहा इतनी बिंदियां मेरे से बिटिया लगवा ली हैं, कुछ मुझे नहीं दोगे? मन ही मन सोचा इतनी बिंदियों से ना जाने कितनी कितना पैसा हो गया होगा, करोड़ों अरबों का मालिक मैं हो गया, उसमें से लाख दो लाख दस लाख भी बाबा ले लेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो आपकी इच्छा है बाबा ले लीजिएगा, ठीक बात है। कागज पकड़ने लगा, उससे कागज लेके कहा कि भाई ऐसे करते हैं, ये एक मैं ले लेता हूं बिंदियां, तू रख अपने पास। क्या रहा उस व्यक्ति के पास? तनिक बुद्धिजीवो, आप सब बैठे हुए हो यहां पर, उस व्यक्ति के पास क्या रहा? उस एक के बिना हम भी शून्य हैं। बच्चियों नन्नी हो, मेहरबानी करके इन बातों को ऐसे इग्नोर नहीं करना। दूर दूर से घर छोड़ के यहां आई हुई हो, युवक भी, उसके बिना कोई अपना नहीं है। अतएव हमेशा उसके साथ जुड़ के रहो, उसके जुड़े बिना गुजारा नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछ दिया, कोई युवक थे, पूछा, हो सकता है स्वामी विवेकानंद ही हों, लेकिन उनका नाम नहीं है। एक युवक ने पूछा, ठाकुर किसी का जीवन, सफल जीवन किसका होता है, सुखी जीवन किसका होता है, आनंदमय जीवन किसका होता है, सार्थक जीवन, पर्पसफुल जीवन किसका होता है? बड़े सुंदर प्रश्न उस युवक के ठाकुर के सामने है। ठाकुर कहते हैं तू बता किसका जन्म सार्थक होता है, किसका जीवन सार्थक होता है, किसका जीवन पर्पसफुल होता है, सफल होता है, किसका जीवन सुखी, परम सुखी। सुखी तो हर कोई दिखाई देता है, लेकिन भीतर से खोल के देखो ना अंदर क्या हालत होती है। बाहर से सुखी दिखाई देने से क्या होता है? क्या कोई भीतर से सुखी है? भीतर से सुखी तो वही होगा जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो उस शांति के स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। सुख तो संसारिक सुख है, बात तो शांति की है किसी के पास वह शांति? उससे जुड़े बिना शांति कहां से मिले? बिजली के स्रोत के साथ जुड़े बिना बिजली कैसे आएगी? शांति के स्रोत से जुड़े बिना शांति कहां से प्राप्त होगी? आनंद के स्रोत के साथ जुड़े बिना आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो बता आनंदमय जीवन किसका होगा, सुखी जीवन किसका होगा? कहा जो बलवान है, जीरो। ठाकुर साथ ही साथ मार्क्स देते जा रहे हैं। जो अति बलवान है वह सुखी होगा, उसका जीवन सार्थक होगा। ठाकुर कहते नहीं, शून्य, एक जीरो। जो धनवान है, जीरो। ठाकुर साथ ही साथ सत्तावान है, प्रतिष्ठावान है, यशमान है, उसका जीवन सुखी, जीरो। विद्वान है, जीरो। ठाकुर इस सब चीजें इकट्ठी कर दी जाए तो उतने ही अधिक जीरो। ठाकुर कहते हैं। फिर ठाकुर आप भी बताओ, अनंतमय जीवन, संतुष्ट जीवन, सुखी जीवन, सार्थक जीवन किसका होगा? ठाकुर इतना ही उत्तर देते हैं, उसका जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जीवन ही सुखी है, उसका जीवन ही पर्पसफुल हो सकता है। आखिर ये होता कैसे है? परमात्मा के साथ जुड़ने से हमें क्या मिलता है? इसकी तार बिजली से जुड़ी हुई है तो इसमें बिजली का प्रवाह हो रहा है। आपकी तार परमात्मा के साथ जुड़ेगी, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा, तो जो परमात्मा के पास है वह क्या आपके अंदर प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? इट इज सो सिंपल। उसके गुण आपके अंदर आएंगे, उसका बल आपके अंदर आएगा, उसकी कृपा आपके अंदर आएगी, उसका प्यार आपके अंदर प्रवाहित होगा, क्यों नहीं? यदि ये इस बिजली के साथ तार जुड़ने से इसके अंदर बिजली का प्रवाह हो रहा है, तो परमात्मा के साथ आपकी तार जुड़ने से, कनेक्शन जुड़ने से, उसके सारे के सारे सद्गुण, उसकी कृपा, उसका प्यार आपके अंदर क्यों प्रवाहित नहीं होगा? यदि नहीं हो रहा तो यही समझना चाहिए अभी हमारी तार परमात्मा के साथ जुड़ी नहीं हुई है। जिसकी तार परमात्मा के साथ जुड़ गई होती है वह तो हर वक्त आनंदित दिखाई देता है। उसका एक ही नारा होता है, मेरी हर आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है, ही इज एडिक्वेट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तार परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, मानो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो दिव्य सज्जनों, अभी तक तो ये बात हुई कि हमारे जीवन में परमात्मा की नितांत आवश्यकता है। Do you feel so? Please feel so. मेरा छोटा मुंह है, अपना बच्चा समझ के समझिएगा। आप सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, Feel his necessity in your life. महसूस कीजिएगा कि उनकी नितांत आवश्यकता है हमारे जीवन में। क्या होता है इससे? दो ही ढंग से तार जुड़ सकती है ना, या तो परमात्मा से बेटा जुड़ेगी या संसार से, और तो कुछ है नहीं। संसार से जुड़ने से ललिता क्या होता है? दो से तार जुड़ेगी ना, या परमात्मा से जुड़ेगी या संसार से जुड़ेगी। जिसकी तार परमात्मा से जुड़ी है वह साधक या भक्त, और जिसकी संसार से जुड़ी है वह संसारी है। क्या अंतर है? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उस अंतर की चर्चा नहीं करेंगे। संसार से हमें क्या अपेक्षा है और संसार हमें क्या देता है वह देखते हैं। आज एक राजा संसार से ऊब गया है, राजकाज से नीमा जी ऊब गया है। खुशकिस्मती, कौन ऊबता है संसार से? ना कोई संसार से थकता है ना कोई ऊबता है। राजा की खुशकिस्मती है कि वह आज संसार से ऊब गया है। अतएव किसी ऐसे की खोज में चल पड़ा है जो शांति दे सकता है, जो परमानंद दे सकता है, जो उसे सब कुछ दे सकता है जो अभी तक सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल सका। राजा के पास किस बात की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वह अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस कर रहा है। आज ये उसी की खोज में राजा निकल पड़ा है। एक वृद्ध मिले, राजा साहब, वृद्ध ने कहा, राजा साहब आज अकेले न रथ, न घोड़े, न हाथी, न सेना, न अंगरक्षक इत्यादि, क्या बात है? बहुत हो गया, राजा साहब ने कहा, मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, मैं यहां रहना नहीं चाहता। निश्चय पक्का है? वृद्ध ने पूछा। आर यू डिटर्मिंड? उस वृद्ध ने पूछा। हां, पर आप शंका क्यों कर रहे हैं? इसलिए, वृद्ध कहता है, इसलिए तेरे जैसे अनेकों ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद जाके वापस आ जाते हैं, या जहां कहीं जाते हैं वहीं अपना संसार स्थापित कर लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, चेले खड़े कर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, अपना नया संसार वहां स्थापित कर लेते हैं। मैं तो समझता हूं इस संसार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। राजा के मन में हुआ, ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से इस प्रकार की बातचीत कर रहा है, मुझे राजा भी कह रहा है और मेरे से इस प्रकार की बहादुरी की शूरवीरता की बात कर रहा है, कौन है ये व्यक्ति? वृद्ध से कहा, महाराज अपना परिचय दीजिएगा। वृद्ध कहते हैं, मैं वही संसार हूं जिसको छोड़ के तू जा रहा है, मैं वही संसार हूं जिसको तू छोड़ के जा रहा है। प्रणाम किया, कहा एक चिरकाल से मेरी जिज्ञासा है, कृपया पूर्ण कीजिएगा। क्या जिज्ञासा है? कहा मैं एक अच्छे कुल से हूं, क्षत्रिय परिवार से हूं, मेरे माता पिता ने मेरी शिक्षा बड़े उच्च स्थान पर करवाई, मानो बहुत अच्छा शिक्षित हूं, मूर्ख नहीं, एक नहीं 10 विवाह हुए, अनेक बच्चे हैं, संतान है, राजा हूं, राज्य है, प्रजा है, सब कुछ है, महलों का कोई अंत नहीं, पूंजी का कोई अंत नहीं, संपत्ति का कोई अंत नहीं, जिंदगी में ना जाने कितने भले काम किए हैं, यज्ञ ही यज्ञ किए हैं, औषधालय ही औषधालय खोले हैं, प्रतीक्षालय ही प्रतीक विश्रामालय ही विश्रामालय खोले हैं, ना जाने कितने भलाई के काम किए हैं, इसके बावजूद भी क्या मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई कि मैं शांत नहीं हूं? हर कोई जितने भी यहां बैठे हैं टटोल के देखो, क्या आप सबका यह प्रश्न नहीं है? इट्स वाइटल क्वेश्चन सबके अंदर, सब कुछ है उसके बावजूद भी शांति नहीं है। राजा के पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास तो थोड़ा थोड़ा, राजा भी शांत नहीं है। देवियों बंधुओं ध्यान से सुनो संसार क्या कहता है। कहता है राजन एक बहुत भेद की बात, तेरा ही प्रश्न है, न जाने कितनों ने ये प्रश्न आज तक अपने मन में लेके रखा हुआ है, लेकिन आज तेरे माध्यम से मैं सारे संसार को उत्तर दे रहा हूं। संसार कह रहा है मैं सबको उत्तर दे रहा हूं, मेरे पास सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, तो मैं दूं कहां से? हम गुनाहगार कहां हैं? जहां जो चीज है ही नहीं वहां टटोलते फिर रहे हैं, तो जो उसके पास होगा वह वही देगा ना। उसके पास अशांति है, एक के पास अशांति है, दुख है, तनाव है, चिंता है, भय है, और एक के पास परम शांति है, परमानंद है। चॉइस इज योर्स, आप इसको पकड़ना चाहते हो या उसको पकड़ना चाहते हो। हर बंदा हर बंदी इस संसार में उस सुख को खोजने की भरसक कोशिश कर रहा है। जिंदगी भर पुरुषार्थ जिंदगियां व्यतीत हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन वह सुख नहीं मिलता। क्यों? उस संसार के पास सुख है ही नहीं, जो मर्जी कर लो आप। तो देखिए सच है ना, जो सर्व सुखदाता है, बाबा नानक कहते हैं ना सब सुखदाता राम है, दूसरे नहीं कोई। ये बातें देवी ऐसी नहीं कही हुई, सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। ये संसार से नहीं मिलने वाला, ये उसी स्रोत से मिलने वाला है जिसके पास ये है। जुड़िएगा साथ क्षण उस दीवादी धीव के साथ। कहां है वे? कहां जुड़ी? स्वामी जी महाराज इतना तो कहते हैं कि मैं उस वक्त कनेक्शन देता हूं, लेकिन ये तो नहीं बताते कि जिसके साथ मैं कनेक्शन दे रहा हूं वह है कहां पर। खोज कीजिएगा। पर स्वामी जी महाराज कहते हैं इन चीजों पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वो वैज्ञानिक करें, ये ऑलरेडी सर्च्ड है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रिसर्च। रिसर्च करने की जरूरत नहीं। शास्त्र संत महात्मा ठोक बजा के कहते हैं वे सर्वव्याप्त परमात्मा, ऑल प्रवेडिंग, सर्वव्यापक परमात्मा, कण कण में व्याप्त परमात्मा, बाहर भी है और भीतर भी है। वाई मूव आउटवर्ड? भीतर खोजो उस परमात्मा को, भीतर पाओगे उसे, बाहर टक्करी मारने की जरूरत नहीं। भीतर इस मंदिर में बैठा हुआ है परमात्मा, उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। हिलाइए उन्हें, उठिए महाराज, उठिए, जागिए। कैसे उठेंगे, कैसे हिलाओगे? आपको अपनी मित्र को बुलाना हो तो आवाज देते हो ना पुष्पा, आवाज देते हो उसे। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं आपको पुकारने का ढंग ही ये देता हूं, आप राम 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 इस नाम से, शिव शिव इस नाम से, कृष्ण कृष्ण इस नाम से, नारायण नारायण इस नाम से, हरि हरि इस नाम से, जो भी नाम आपको प्रिय हो। द ईजिएस्ट मेथड ऑफ अप्रोचिंग द लॉर्ड, रिपीट हिज नेम। मात्र रिपीट नहीं करना, पुकारो, पर पुकारो परमात्मा को। ये विश्वास मत रखो, इसको तोड़ो, इस विश्वास को। आगे से बोलता तो है ही नहीं, ये विश्वास बहुत घातक है, इसको तोड़िएगा। हमें पुकारना है जब तक वह बोलता नहीं है आगे से, जब तक वह आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। देवी आप अपने पुत्र को बुलाती हो, कैसे पता लगता है कि उसके पास आवाज पहुंची है कि नहीं पहुंची? जब तक वो आपके पास नहीं आ जाता तब तक आपको लगता है कि शायद उसने सुना नहीं है, या आपको वहां से आवाज देता है हां मम्मी, मानो उसने सुन लिया है। क्या किसी साधक ने आज तक राम राम को बुला के ये अपेक्षा रखी है कि वह यदि बोले ना तो मानो हमारी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही है? क्यों नहीं पहुंच रही? बीच में संसार का शोर है, क्यों नहीं पहुंच रही आवाज के पास? क्लास में शोर हो, आपको टीचर की आवाज सुनाई नहीं देती? शोर है, भीतर भी शोर, बाहर भी शोर। देवियों सज्जनों, तो आवाज कैसे पहुंचे? मुझे प्रेम से कोई पुकारता ही नहीं, या उच्च स्वर से गाए तो मैं सुनूं, या मुझे प्रेम से बुलाए तो मैं सुनूं। दोनों ही चीजें यदि लैकिंग हैं तो हमारी पुकार कभी परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकेगी। आर वी नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज? हम सब के सब इसी रोग से ग्रस्त हैं। पुकारते तो हैं हम, बुलाते तो हैं हम, नाम तो हम जपते हैं, लेकिन हमारी पुकार जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही। संभवतया हमारा अभ्यास हो गया हुआ है टेप की तरह राम 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 रटने का, उसमें प्यार नहीं है, उसमें पुकारने की भावना नहीं है। हम इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, कार्य भी बाहर देखते हैं, कौन कौन खड़े हैं ये भी हमें सब कुछ पता लगता है, और परमात्मा का नाम भी हम जप रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई जिसका नाम जपो उसे ही याद करो तो बात बनती है। आप नाम तो मेरा जपो और याद संसार को करो तो ये सौदा मेरे साथ नहीं चलता। क्या हमारे साथ यही सत्य नहीं है? हम जाप करते हैं लेकिन याद हम संसार को करते हैं, और उस देवादिदेव से चाहते भी हम संसार ही हैं। हम भक्ति नहीं चाहते, हम परमात्मा नहीं चाहते, मानो हम शांति नहीं चाहते हैं। ऊपरी ऊपरी बातें हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख चाहते हैं, नश्वर, थोड़ी देर का सुख। अभी नाश्ता करके आए हो, जब तक जाओगे खूब भूख लगी होगी, बस उस सुख की अवधि मात्र इतनी ही है देवी, इससे ज्यादा उस सुख की अवधि नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं, जिसको हम पा रहे हैं। लेकिन जिंदगी इस काम के लिए नहीं मिली, जिंदगी की तृप्ति उस काम में होगी जब आपको परम सुख मिलेगा, जिसे शाश्वत सुख कहा जाता है, एटर्नल हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है, जिसे ब्लिस कहा जाता है, जिसे परम शांति कहा जाता है। जिंदगी इस काम के लिए मिली हुई है। तो सदक्षिण दृढ़ संकल्प रूप बन ही बन, उस एक के साथ जुड़ के रहना है, अपने जीवन में उस परमात्मा को बेटा प्रमुखता देनी है। ना दोगे तो क्या होता है आप सब जानते हो, पर एक छोटी सी उदाहरण के साथ समाप्त करने की इजाजत मांगूंगा। आज कन्हैया ने दांत निकाले हैं, उस खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है, माँ यशोदा ने एक फंक्शन रखा है घर में, बहुत लोगों को बुलाया है, उनका स्वागत करना है, उनके खान पान का प्रबंध इत्यादि इत्यादि। इसलिए सोचा इस कन्हैया को यदि ये सोया ना तो मुझे परेशान करेगा, इसको सुला देना चाहिए। तो माता जानती हैं बच्चों को कैसे सुलाया जाता है, सुला दिया। पर कोई बच्चा हो तो उसे तो सुलाया जा सकता है, लेकिन कन्हैया को कौन सुलाए? एक बैलगाड़ी खड़ी है बाहर, उस पर गांव के सभी लोग दूध दही इत्यादि बर्तनों में डालते जाते हैं। कन्हैया को गाड़ी के नीचे पलने में डाल के तो सुला के तो माँ निश्चिंत हो गई है, कन्हैया सो गया है, अब मुझे काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कन्हैया यहां कहते हैं, माता तू व्यवहार तो कर, इस व्यवहार से जब तक संसार में रहोगे छुटकारा नहीं है। जो संसार के साथ हमें किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं, जो परमात्मा के साथ किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। इस संसार में रहते हुए व्यवहार तो माता छूटेगा नहीं, लेकिन व्यवहार करते करते मुझे भूल जाना ये बड़ा पाप है, और हम सब ये पाप करते हैं। कन्हैया सोए नहीं है, पूतना का भाई आ गया है, अभी अभी पूतना को मारा है बदला लेने के लिए। उसी गाड़ी पर जहां सामान रखा हुआ था उसी गाड़ी पर आके तो राक्षस बैठ गया है। कन्हैया ने नीचे से टांग मारी, सामान सहित राक्षस सहित गाड़ी को उल्टा कर दिया, राक्षस मर गया। संत महात्मा कहते हैं कन्हैया के मुख से, यदि आपने मुझे गाड़ी के नीचे रखा तो आपकी गाड़ी भी ऐसे ही उल्टती रहेगी जैसे ये गाड़ी उल्टी है। जिसको ऊपर रखना है गाड़ी के उसे ऊपर रखो, और वह है परमात्मा। उस परमात्मा को नीचे रखोगे पीछे डालोगे तो वह हमारी गाड़ी ऐसे ही उल्टाता रहेगा जैसे इस गाड़ी को उल्टाया है। मानो जीवन से अशांति तनाव दुख संकट कभी जाएंगे नहीं, सुखी जीवन चाहती हो देवी सज्जनों, सब लोग शांति चाहते हो, आनंद में जीवन चाहते हो, तो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रमुखता दो, उसको आगे रखो। सबसे प्रथम परमात्मा, सबसे आगे परमात्मा, मेरे सिर माथे पर परमात्मा। इतनी सी सोच दिव्य सज्जनों, परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरा। संसार में सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। इतनी सी सोच जीवन में उतर जाए तो चिंता क्या करेगी, कहाँ आएगी। मेरे सिर पर तो बैठो, देखो कौन बैठा हुआ है, फिर चिंता किस बात की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, बेटा स्वामी जी महाराज से परिचित थे। मुझे पता नहीं कि दीक्षा ली हुई कि नहीं ली हुई थी, लेकिन परिचित थे। अतएव राजभवन में जगह जगह पर दीवार पर लिखवाया हुआ था, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। तू क्यों चिंता करे बंदे, सबकी करे राम। रे बंदे तू चिंता क्यों करे, सबकी करे राम। कितनी सुंदर बात देवियों, ऐसा हमारा विश्वास हो जाए तो फिर चिंता का कोई स्थान नहीं, तनाव का कोई स्थान नहीं। पुरुषार्थ करवाता है परमात्मा, फिर अपने अनुसार हमारे जीवन का वह संचालक बन जाता है बेटा, चलाने वाला, हमारे जीवन को संभालने वाला बन जाता है, अपने अनुसार चलाता है। कब, जब आप परमात्मा को अपने जीवन में प्रमुखता देते हो तब। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। खूब प्रेम पूर्वक देवी सज्जनों उस परमात्मा को याद करो। आपको आश्वासन देता हूं, आपके प्रेम का पात्र सिर्फ वही है। मत बिखेरो इसे इधर उधर। जिनसे आप प्रेम करते हो, यदि ये कहूं चाहे वे ये हैं चाहे वे ये हैं, दोनों ही एक दूसरे के खून चूसने वाले हैं। सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा के साथ। इसलिए अपने प्रेम को बेटा डोंट वेस्ट एनी मोर, यूटिलाइज इट फॉर हायर पर्पसेस। द हाईएस्ट पर्पस वो है प्रेम करने योग्य, उसे प्रेम करो, अपना समझो उसे। राम मेरा, मैं राम का। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत देते हैं। हार्दिक धन्यवाद एंड कोटि से प्रणाम सबको।